हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मुझे मेरा बेटा लौटा दे आयुष, वरना वर्षा कभी ठीक नहीं हो सकेगी, वो मर जाएगी। प्रेम ने आयुष्मान पर दबाव बनाना चाहा। वो अच्छा था तो उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहा, पर आयुष्मान पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ा। उसने बिना किसी भाव के दृढ़ता से कहा, ये तेरी परेशानी है प्रेम, मेरी नहीं। अर्श तेरा नहीं, मेरा बेटा है, और मैंने अपनी वाइफ से वादा किया है कि हम अपने बेटे को वापस लेकर आएंगे, और मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगा। इसके बाद वो एक पल रुका और घिन भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तू आज भी बिल्कुल नहीं बदला प्रेम, स्वार्थी का स्वार्थी ही रहा। प्रीति को छोड़ते वक्त भी तूने बस अपना स्वार्थ देखा और अपने प्यार के लिए उसे और अपने ही बच्चे को ठुकरा दिया। और आज जब तेरे प्यार पर मुसीबत आई, तो तूने प्रीति से उसके बेटे को जुदा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो माँ जिसने उसे जन्म दिया, पाला, वो उसके बिना कैसे रहेगी। तूने वर्षा के बारे में सोचा, पर प्रीति का ख्याल भी नहीं आया तेरे मन में। प्रीति छोड़, तूने अर्श के बारे में भी नहीं सोचा कि वो 3 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर कैसे रहेगा। वो कोई 1 महीने का छोटा बच्चा नहीं है प्रेम, कि उसे किसी की भी गोद में डाल दो और वो उसे ही माँ बाप समझ ले। बड़ा हो गया है वो, अपने मम्मी पापा को पहचानता है। तूने उस बच्चे को उसके माँ बाप से दूर कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। उस बच्चे को इतनी तकलीफ दी, वो तड़प रहा था अपने मम्मी पापा के लिए। एक दिन में क्या हाल बना दिया तूने मेरे बेटे का। जिस बेटे की आंखों में मैंने कभी एक आंसू नहीं आने दिया, आज तेरे वजह से वो इतना रोया मेरे सामने। उस छोटे से बच्चे के मन में तूने इतना डर बिठा दिया कि वो मुझे छोड़ नहीं रहा था कि तू फिर से उसे मुझसे दूर ले जाएगा। इतना कैसे गिर गया तू प्रेम, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक नन्हे से बच्चे को इतना दर्द देना। रोने ही कांपी तेरी, एक बार भी तुझे उस पर दया नहीं आई, और तू चाहता है कि मैं अपना बच्चा तुझे दे दूं। अगर वर्षा से इतना ही प्यार है तुझे, और तुझे उसे सदमे से बाहर ही निकालना था, तो इतने अनाथ बच्चे हैं, किसी को भी अडॉप्ट करके वर्षा के सामने उसका बेटा बनाकर ले आता। हमारे बच्चे को हमसे छीनने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, पर तुझे हमेशा बस प्रीति को तकलीफ़ देनी होती है, और आज भी तूने वही किया, अपनी खुशी के लिए प्रीति से उसके बेटे को छीन लिया। वर्षा की मानसिक हालत देखी है तूने, कोई हमें बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा। प्रेम ने जैसे ही ये कहा, आयुष्मान ने तुरंत ही कहा, तो तू अपने प्यार से ठीक कर उसे, उसको उस सदमे से बाहर निकाल। मैंने भी प्रीति को तेरे दिए धोखे के शौक से बाहर निकाला था। मेरी बात को अपने दिलो दिमाग में अब अच्छे से बिठा ले कि अर्श मेरा और प्रीति का बेटा है, उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम अपना बेटा तुझे कभी नहीं देंगे। अब तुझे जो करना है कर, बस मेरी पत्नी और मेरे बेटे से दूर रह। इस बार वर्षा की हालत देखकर तेरे खिलाफ केस वापस ले रहा हूँ, पर अगर दोबारा तेरी परछाई भी मेरे बेटे या मेरे परिवार पर पड़ी, तो माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी तुझे, और तब किसी भी वजह से तेरी सज़ा में कोई रियायत नहीं मिलेगी। आयुष्मान ने उसे धमकी दी, फिर चेतावनी भरी नज़रों से उसे देखते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसने इंस्पेक्टर से कुछ कहा, फिर अर्श को अपनी गोद में उठाई वहाँ से चला गया। अर्श ने अपनी छोटी छोटी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेटा हुआ था, और उसके कंधे पर सर रखे उससे लिपटा हुआ था। आयुष्मान उसे थामे हुए ही कार में बैठ गया। अर्श को उसने अपनी गोद में बिठा लिया। अर्श ने उसके सीने में सर छुपाते हुए अपनी छोटी छोटी बाहों को उसके पेट और पीठ पर लपेट कर उसे कस के पकड़ लिया। सारे रास्ते आयुष्मान उसे देखते हुए ड्राइव करता रहा। कितना डर गया था अर्श, उसका हंसता खिलता बच्चा डर के उसे लिपटा हुआ था, और ये सब प्रेम की वजह से हुआ था। पर वर्षा की हालत देखकर वो चाहकर भी उसे उसके गुनाहों की सज़ा नहीं दे सका, पर शायद उसे उसके गुनाहों की सज़ा देना भगवान शुरू कर चुके थे। कार सीधे पार्किंग में रुकी और अर्श को अपनी बाहों में थामे आयुष्मान लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर उसने जैसे ही डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुल गया और सामने प्रीति खड़ी थी, जो शायद काफ़ी देर से उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। प्रीति की व्याकुल बेचैन निगाहें जब अर्श पर पड़ी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उसने अपनी थरथरा की हथेलियों से अर्श के सर को छुआ, जिसने अपना मुंह आयुष्मान की गर्दन में छुपाया हुआ था। अपनी माँ के स्पर्श को पहचानते हुए अर्श ने सर घुमाकर देखा और प्रीति को देखते हुए रोते हुए उससे लिपट गया। प्रीति भी उसे अपनी बाहों में भरे फूट फूट कर रो पड़ी। जाने कितनी ही बार उसने अर्श को पुकारते हुए उसके चेहरे को चूमा था। कुछ दूरी पर खड़ी मानसी भी सुबक रही थी। अर्श वापस आ गया, इससे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। अगर अर्श को कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। आयुष्मान की नज़र मानसी पर पड़ी तो उसने इशारे से ही उसे रोने से मना कर दिया। मानसी ने उसका इशारा समझते हुए अपने आंसुओं को पोंछ लिया और मुस्कुरा दी। आयुष्मान ने कुछ देर तक तो प्रीति को बिल्कुल नहीं रोका। जानता था कि प्रीति इस एक दिन में किस दर्द से गुजरी है और इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही होगी, इसलिए वो खामोश खड़ा शांति से दोनों को देखता रहा। जब थोड़ा वक्त गुजर गया तो उसने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, अर्श अब बिल्कुल ठीक है प्रीति, अब उसे कभी कोई हमसे दूर नहीं करेगा। शांत हो जाओ, इतना रोना तुम्हारे और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। प्रीति ने सर उछाकर नम आंखों से उसे देखा तो आयुष्मान ने इशारे में उसे रोने से मना किया और अर्श की तरफ इशारा किया। प्रीति ने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को संभाला, फिर अर्श को लेकर कमरे में चली गई। अर्श को चुप करवाने के बाद उसने उसे नहलाकर कपड़े पहनाए। इतने में आयुष्मान खाना लेकर कमरे में चला आया। मेरे बेटे ने खाना खाया? प्रीति ने पहला निवाला अर्श की तरफ बढ़ाते हुए उसे सवाल किया, जिस पर अर्श ने मुंह बिचकाते हुए इनकार में सर हिला दिया। प्रीति और आयुष्मान दोनों की आंखों में नमी तैर गई। प्रीति ने अर्श को पहला निवाला खिलाया, फिर दूसरा निवाला आयुष्मान की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, अर्श मिल गया, अब आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं। तुमने कुछ खाया? आयुष्मान ने खाने के बजाय उल्टा उसी से सवाल कर दिया, जिस पर प्रीति ने सहमति में सर हिला दिया। मानसी ने खाना खिला दिया था मुझे, और उसने खाया। अब तो आप खा लीजिए। आयुष्मान ने अब मुंह खोला। आयुष्मान और प्रीति ने मिलकर अर्श को खाना खिलाया। प्रीति ने आयुष्मान को भी आज अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद आयुष्मान खाली बर्तन लेकर चला गया और प्रीति हाथ धोकर अर्श को सुलाने लगी। भैया, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। आयुष्मान किचन में काम कर रहा था जब मानसी की इस बात ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। आयुष्मान ने सर घुमाकर एंट्रेंस पर खड़ी मानसी को देखा और भौं उचकाते हुए बोला, क्यों, ऐसे अचानक वापस क्यों जाना चाहती हो तुम? ऑफिस की छुट्टी हो रही है, इसलिए जाना चाहती हूँ, मानसी ने निगाहें झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। आयुष्मान ने हाथ धोए और उसके पास चला आया, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मनु बेटा, मैं जानता हूँ कि जो हुआ उसके लिए तो खुद को माफ नहीं कर पा रही, खुद को दोष दे रही है, इसलिए यहाँ से जाना चाहती है, पर जो हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। मैं या प्रीति तुझे जिम्मेदार नहीं ठहराते, हमें तुझसे कोई नाराजगी नहीं, तुझे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। फिर अब तो अर्श सही सलामत वापस आ गया है। मानसी खामोशी से उसकी सब बात सुनती रही, फिर पलकें उठाकर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ भैया कि आप भाभी मुझसे नाराज नहीं, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, बाद में आऊंगी मैं वापस।
आयुष्मान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अगर तू यही चाहती है तो मैं रोकूंगा नहीं तुझे, कल छोड़ाऊंगा तुझे, पर याद रखना कि जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी और तेरे भाई भाभी को तुझसे कोई नाराजगी नहीं है, तो जब चाहे पूरे हक के साथ अपने भाई के घर आ सकती है। जी, मानसी ने सर हिलाया और उसके सीने में खुद को छुपा लिया। यही होते हैं अच्छे लोग, जिनसे गलती से कोई गलती हो जाए तो वो खुद को ही माफ नहीं कर पाते, और बुरे लोग कितनी ही गलतियां करें पर उन्हें कभी अपनी करनी पर पछतावा तक नहीं होता।